आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में स्वागत है। हालांकि बाहर इतनी गर्मी है, फिर भी इतनी संख्या में यहां भक्त एकत्र हुए हैं। हालांकि और अधिक संख्या में होते तो और अच्छा होता, लेकिन गर्मी की शक्ति लगता है भक्ति की शक्ति से अधिक है, इसलिए भगवान को भी गर्मी में बहुत तकलीफ होती है, तो उनको भी चंदन से लेप लगाते हैं ताकि उनके दिव्य शरीर में भी ठंडक पहुंचे। आपने हमेशा सोचा है कि कृष्ण भगवान काले होते हैं, उनका रंग बरसात के मौसम के बादल की तरह होता है, श्यामलांगो, लेकिन यहां हम सिंहासन पर गोरे कृष्ण को देख रहे हैं। कृष्ण बहुत गोरे हैं। इधर शायद आप में से कई भक्तों ने सोचा होगा, अभी कृष्ण गोरे कैसे हो गए, काले होते हैं, ये कौन से नए कृष्ण आ गए। नए नहीं हैं, वही कृष्ण हैं, लेकिन उनको चंदन का लेप लगाया हुआ है। ये एक उत्सव होता है वैष्णव मंदिरों में, जबकि गर्मी के मौसम में भगवान को आराम देने के लिए, उनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए हम चंदन का लेप लगाते हैं। भगवान भी एक व्यक्ति हैं, जिस तरह हम भी व्यक्ति हैं, और जैसे गर्मी के समय में हम भी पंखा वगैरह चालू करते हैं, नाना प्रकार के शरबत इत्यादि पीते हैं, एयर कंडीशन में बैठते हैं, क्यों, गर्मी से थोड़ी राहत प्राप्त करने के लिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहां भौतिक संसार में प्रकट होते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, तो वो भी सोचते हैं कि हमको बहुत गर्म लग रहा है। तो जिस प्रकार से हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, नैवेद्य में भोजन रखते हैं, एक थाली उनके सामने रखते हैं, और उस थाली में उतना रखते हैं जैसे एक व्यक्ति साधारणतः खा लेता है, और उतने समय के लिए रखते हैं जितना कि एक व्यक्ति को खाने के लिए लगता है। मतलब हम भगवान को एक व्यक्ति जानकर हम उनकी आराधना करते हैं। तो जैसे भोग चढ़ाते हैं, जैसे उनका अभिषेक करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार से कभी कभी हम पंखा भी चलाते हैं जैसे पंखा भी चल रहा है, और नाना प्रकार की सुविधाएं भगवान को देने का प्रयास करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि सेवक आराम से रहे और भगवान कठिनाई में हो। वैसे देखा जाए तो भगवान के लिए क्या कठिनाई है, भगवान तो आत्मा राम है, लेकिन फिर भी भक्त की भावना रहती है कि जितना हम सुख सुविधा अपने आप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा भगवान के लिए होना चाहिए। भक्ति का सिद्धांत यह है कि हमारे लिए गरीबी, भगवान के लिए ऐश्वर्य। इसलिए भगवान के दिव्य शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए इस समय यह उत्सव मनाया जाता है। वैसे यह साधारण पुतली नहीं है, प्रतिमा नहीं है, यह अर्चा विग्रह कहलाता है। भगवान के श्री मूर्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कोई साधारण धातु की पुतली हमें नहीं समझना चाहिए। साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए उनकी इस तरह से सेवा हम करते हैं। खास करके ये 21 दिन जो कि अक्षय तृतीय तिथि से आरंभ होते हैं, और 21वां दिन अभी बुधवार को समाप्त होगा, तो इन 21 दिनों में खास करके सुबह के समय भगवान को चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। वैसे अलग अलग वैष्णव मंदिरों में अलग अलग प्रथा होती है, अलग अलग पद्धतियों से चंदन का लेप लगाया जाता है, लेकिन मूल बात यह है कि लेप अवश्य गर्मी के समय में लगाया जाता है। वैसे अक्षय तृतीय की तिथि ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि सारे सृष्टि का निर्माण इस तिथि पर हुआ था, और यह भी कहा जाता है कि जो कार्य हम अक्षय तृतीय के दिवस पर आरंभ करते हैं वो क्षय कभी नहीं होता है, हमेशा रहता है। वैसे भक्ति तो अक्षय है, इसलिए भक्ति कभी भी चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति भी हमें अक्षत्र ही चालू करना चाहिए, एक साल और रुकेंगे। जो व्यापारी होते हैं कई बार सोचते हैं चलो हमारा व्यापार और अच्छा चलेगा, हम अक्षय तृतीय के दिन चालू करेंगे, ये शुभ मुहूर्त है, हम घर का उद्घाटन करेंगे अक्षय तृतीय के दिवस पर। वैसे शुभ तो है अवश्य, लेकिन भक्ति के पथ में ऐसे शुभ और अशुभ बातें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। भक्त आप में ही अक्षय है, इसलिए जिस दिन आप भक्ति आरंभ करते हैं, जिस दिन आप भक्ति करते हैं, वो आपके लिए अक्षय तृतीय हो गया। तृतीय तो नहीं, जो भी है, प्रतिपाद हो, द्वितीय हो, सप्तमी हो, लेकिन वो अक्षय हो जाता है। तो खैर, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो रास्ते में कई जगह से गुजरते हुए गए, गर्मी का समय था, और चलते चलते वो रेमुना नाम के एक गांव में आकर पहुंचे। ये बालेश्वर शहर के पास में आता है, उड़ीसा नीलाचल प्रांत में। जगन्नाथपुरी की ओर वो चलते जा रहे थे, और जब रेमुना में आए तो वहां पर उन्होंने देखा कि खीर चोरा गोपीनाथ का मंदिर है, बड़ा सुंदर कृष्ण का विग्रह इस मंदिर में है। वैसे और भी कृष्ण की मूर्तियां उसी मंदिर में है, लेकिन ये खीर चोरा गोपीनाथ की मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। चैतन्य महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु थे और उनके अन्य कई भक्त थे। तो जब महाप्रभु वहां आए तो उन्होंने गोपीनाथ जी का दर्शन किया और बड़े आनंद से भाव विभोर होकर उन्होंने नृत्य और कीर्तन किया। और बाद में जब वो बैठे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो अंदर जो पुजारी थे उन्होंने महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखा, बड़े प्रभावित हुए, और उनके सामने 12 के 12 जो खीर चढ़ाए गए थे वो उनके सामने लाए। तो महाप्रभु और उनके साथी कुल मिलाकर 5 थे, तो महाप्रभु ने 7 वापस कर दिए और 5 जो कुल्लड़ थे या द्रोण थे उस खीर के, उसका सेवन किया। महाप्रभु ने अपने भक्तों को बताया कि ये विग्रह है और ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, इसका इतिहास है, और खास करके यहां की खीर ये तो अमृत के समान होती है, इसको अमृत केली कहा जाता है क्योंकि अमृत के बराबर इसका स्वाद होता है। और उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज ईश्वरपुरी ने मुझे माधवेंद्रपुरी के संदर्भ में एक जो कथा हुई थी उसका वर्णन किया था, जिससे हम समझ सकते हैं कि चंदन यात्रा ये सब क्या है, इसका महत्व क्या है। तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़े महान वैष्णव थे, भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त, और हमेशा भगवान के प्रेम में भाव विभोर होकर रहते थे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी इतना प्रेमाविष्ट होते थे, प्रेमावेश में आ जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि दिन कभी है और रात कब है। कभी उठते थे, कभी बैठते थे, शरीर किस तरह का काम करता है उनको पता नहीं चलता था। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी इधर उधर आते जाते रहते थे, निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते थे। एक बार माधवेंद्रपुरी व्रज में आए, वृंदावन भूमि में आए, और वहां पर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा उन्होंने की। फिर उसके बाद में उन्होंने गोविंद कुंड नाम के एक बहुत पवित्र स्थली में स्नान किया, और गोविंद कुंड के पास में एक वृक्ष के नीचे वो आराम करने बैठ गए। ऐसे आराम से बैठे हुए वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। उन्होंने काफी समय से उपवास किया था, लेकिन माधवेंद्रपुरी की आदत ये थी, वो किसी को जाकर भोजन नहीं मांगते थे, भिक्षा कभी नहीं मांगते थे। अगर अपने आप से सामने से आकर कोई उनको दे देता था कोई भोजन, तो वो ग्रहण कर लेते थे। अगर कोई सामने से नहीं आता तो भूखे ही रहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर भगवान चाहें कि हम खाएं तो हम वो हमको खिलाएंगे, अगर वो चाहते हैं कि हम उपवास करें तो किसी को भेजेंगे नहीं। तो ये थी उनकी श्रद्धा। ये है महाभागवत भक्तों की की महिमा। पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो जब वो बैठे थे तो अचानक एक छोटा सा बालक उनके पास में आया, और उस बालक को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर माधवेंद्र पुरी बड़े प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। उस बालक ने एक छोटे से मटके में दूध लाया था, और वो बालक ने कहा माधवेंद्र पुरी से कि आप शायद भूखे हैं, तो ये आप ले लीजिए, ये दूध पी लीजिए। आप कौन हैं? आप क्या ध्यान कर रहे हैं और कितने दिन आप यहां रहेंगे? तो माधवेंद्र पुरी ने उस बालक के मधुर वाक्यों को सुनकर, उसके सौंदर्य से विस्मित होकर उत्तर दिया, अरे ये तो बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा निवास स्थान कहां है? तो बालक ने जवाब दिया, मैं एक गोप हूं, ग्वाल बाल हूं, और यहीं पर मैं इस गांव में रहता हूं। वैसे यहां मेरे गांव में प्रथा है कि कोई भूखा नहीं रहता है, अगर कोई चाहे तो भिक्षा कर लेता है और भिक्षा से अपना पेट भर लेता है। ऐसे कई साधु आते हैं जो केवल दूध का पान करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उपवास करते हैं। तो जो लोग उपवास करते हैं और भिक्षा मांगने के लिए आते नहीं हैं, तो मैं खुद आकर उनको भोजन दे देता हूं। वैसे जब यहां पर आप बैठे थे तो हमारे गांव की स्त्रियां यहां से गुजर रही थी, उन्होंने आपको देखा और फिर उन्होंने ये दूध देकर मुझे भेजा आपके पास। तो आप ये दूध पी लीजिए, मुझे अभी जल्दी है, मुझे गायों का दोहन करने के लिए जाना है, क्योंकि मैं तो गोप हूं और मैं जल्द ही, शीघ्र ही आपके पास लौट कर आऊंगा और ये दूध का पात्र लेकर लौट जाऊंगा। तो माधवेंद्र पुरी ने दूध का पान किया। जैसे जैसे वो कर रहे थे, अचानक बच्चा जो है वो अदृश्य हो गया। माधवेंद्र पुरी को पता ही नहीं चला कि कैसे इतने जल्दी बच्चा गायब हो गया वहां से। तो खैर, माधवेंद्र पुरी ने अच्छी तरह से दूध पी लिया और फिर पात्र को धोकर उस बच्चे का इंतजार करते रहे और उस दिशा में देखते रहे जहां से कि बच्चा आया था। लेकिन काफी समय बीत गया और बच्चा आया ही नहीं वापस। तो उस समय रात भर माधवेंद्र पुरी को नींद नहीं आई, केवल उस बालक के बारे में सोचते रह रहे थे। फिर अचानक रात के अंत में नींद की झलक आ गई उनको। नींद के झोंके जब आ गए तो उस समय एक स्वप्न आया उनको। उस स्वप्न में उनके सामने स्वयं वही बालक फिर से आए और बालक कहने लगा, हे माधवेंद्र पुरी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो स्वयं गोपाल हूं, मैं इस व्रजभूमि का अधिष्ठाता देव हूं, मैं तो स्वयं भगवान हूं और मेरा काम है गायों का पालन करना, इसलिए मेरा नाम है गोपाल। वैसे मैं कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी, क्योंकि तुम मेरे प्रेमी भक्त हो, तो मैं सोच रहा था कि कब माधवेंद्र पुरी आएगा यहां और कब मेरी सेवा करेगा, और इतने दिनों के बाद में तुम यहां आए हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सेवा करो। ऐसा हुआ कि कई साल पहले यहां मेरी पूजा हुआ करती थी। वज्रनाभ, जो कि मेरे पोते थे, मेरे मतलब कृष्ण, क्योंकि ये गोपाल मूर्ति बोल रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे वृंदावन में, उनके पोते का नाम था वज्रनाभ। तो गोपाल जी सपने में बोल रहे हैं माधवेंद्र पुरी को कि वज्रनाभ ने मेरी प्राण प्रतिष्ठा यहां की थी, मेरी स्थापना की, लेकिन जब मुसलमान राजाओं ने आक्रमण किया तो यहां के पुजारी जो थे, डर के मारे उन्होंने मुझे यहां झाड़ियों में छुपा दिया, क्योंकि उनको डर था कि ये मुसलमान सैनिक आकर मुझे नष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो तो मैं यहां झाड़ियों में लंबे समय से छुपा हुआ हूं और यहां के कांटे वगैरह मुझे चुभ रहे हैं और यहां की इतनी ठंडी, इतनी गर्मी, कभी कभी बहुत तेज हवा चलता है और कभी कभी वर्षा, तो मैं बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ा में हूं। इसलिए जल्दी से गांव के लोगों को साथ में लेकर मुझे इन झाड़ियों से बाहर निकाल दो। ये कहकर सपना टूट गया। माधवेंद्र पुरी सपने से जागे और आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए कि अरे ये तो स्वयं गोपाल थे और मैं श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाया। और बड़ा शोक करने लगे माधवेंद्र पुरी। उस शोक में उनके आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और कहने लगे कि मैं अपने शोक में अपनी सेवा भूले जा रहा हूं। भगवान ने खुद सपने में आकर मुझे एक सेवा दी है और वो सेवा है कि मुझे जंगल में जाकर झाड़ियों से उनको बाहर निकालना है। तो तुरंत वो गांव में गए। गांव में जाकर सारे लोगों को कहा कि देखो गोवर्धनधारी श्री गोपाल जी विराजे हैं, वो यहां पर झाड़ी में हैं और उनकी इच्छा है कि हम उन सबको निकालें और उन्होंने मुझे आदेश यह भी दिया है कि हम उनको ले जाकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनकी स्थापना करें और बड़े शानदार ढंग से उनकी पूजा आराधना और सेवा करें। तो सारे गांव के निवासी बड़े खुश हुए और उनके साथ में तुरंत आए। वृंदावन ब्रजभूमि के जो निवासी होते हैं वो स्वाभाविक तौर से कृष्ण के भक्त होते हैं जन्म से ही, नहीं तो उनको ब्रज में जन्म कैसे मिला। पूर्व जन्म से ही ये बड़े बड़े कृष्ण भक्त थे, इसलिए उनको वृंदावन में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो जब उन्होंने ये सुना माधवेंद्र पुरी से, तुरंत तैयार हुए और सब लोग अस्त्र लेकर वो आगे जंगल में चले। माधवेंद्र पुरी ने आदेश दिया, मार्गदर्शन किया कि किस दिशा में जंगल में जाना है, क्योंकि सपने में उनको गोपाल जी ने अच्छी तरह से बताया कि किस जगह वो झाड़ियों में छुपे हुए हैं। जब वो आए सारे गांव के निवासी माधवेंद्र पुरी के साथ में, अंततः गोपाल जी को खोज निकाला। गोपाल जी की मूर्ति बड़ी सुंदर थी लेकिन मिट्टी और घास से आच्छादित थी और इतनी भारी थी वो मूर्ति कि कोई उठा नहीं पाए उसको। बाद में कई बलवान पुरुष वहां आए, फिर सब ने मिलकर बड़े कठिनाई से गोपाल जी को उठाया और फिर गोवर्धन पर्वत के ऊपर शिखर पर ले गए और वहां पर ले जाकर एक बड़ा पत्थर एक आसन के रूप में वहां रखा और उस पत्थर के ऊपर गोपाल जी को स्थापित किया और गोपाल जी के पीछे और एक बड़ा पत्थर स्थित किया ताकि गोपाल जी के लिए अच्छा सा आसन तैयार हो। माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि अभी अच्छे ढंग से हमें भगवान की श्री मूर्ति की सेवा करनी चाहिए। तो जो ब्राह्मण इत्यादि वहां आए थे उन्होंने गोविंद कुंड से कई मटके जल के लाए थे, तो 900 मटके जल से उनका अभिषेक कराया गया और उसके बाद में अलग अलग प्रकार के पदार्थों से उनका अभिषेक हुआ। शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान का श्रृंगार और अभिषेक रोज होना चाहिए और खास उत्सव के समय, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान के अभिषेक में खास करके जो दो पदार्थ होते हैं इनका उपयोग किया जाता है, एक है पंचगव्य और दूसरा है पंचामृत। पंचगव्य मतलब वो पांच पदार्थ जो कि गो माता से आते हैं। कौन से है वो पांच पदार्थ? गोबर, गौमूत्र, दूध, घी और दही। ये पंचगव्य बड़े चमत्कार के वस्तु हैं, पांचों के पांच, और वास्तव में इनका प्रयोग करने से सारे वातावरण में और हमारे चित्त में शुद्धिकरण आ सकता है। औषधि के रूप में और भोजन के रूप में भी ये अलग अलग पदार्थ ग्रहण करने से इनका बहुत अधिक लाभ होता है। और पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, मद और शक्कर का पानी। तो इस प्रकार से ये पांच, ये पंचामृत और पंचगव्य से इसके बाद में फिर से अभिषेक किया गया और फिर महास्नान किया गया दूध पानी और घी के साथ में, और उसके बाद में अलग अलग तरह के सुगंधित तेलों से उनको मालिश किया गया। जब साधारण राजा बड़े बड़े लोग होते हैं तेल का मालिश वगैरह लेते हैं तो भगवान को क्यों नहीं दे सकते, भगवान को उत्कृष्ट से चीजों से उनकी सेवा करनी चाहिए। जब उनका शरीर बिल्कुल चिकना हो गया फिर से उन्होंने बहुत हजारों हजारों कुंडों से मटकों से फिर और अभिषेक कराया और उस प्रकार से उसके बाद में अच्छी तरह से उनका श्रृंगार किया गया और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए गए। ये अर्चा विग्रह की सेवा की पद्धति होती है। और उसके जब तैयार हुए भगवान तो सुंदर सुंदर भोग उनको चढ़ाया गया। वो गांव के लोगों ने जब सुना कि गोपाल जी विराजे हैं तो सभी लोगों ने अपने अपने घर से जो भी चावल गेहूं दाल अनाज जो भी दूध था दही था घी सारे पदार्थ सब्जियां इत्यादि सब लाना शुरू कर दिया और वहां सुंदर भोग चढ़ाया गया और फिर आरती हुई और धुआंधार आरती के बाद फिर सभी लोग वहां भोजन के लिए बैठे। लेकिन जब गांव के लोगों ने पदार्थ लाना आरंभ किया तो इतने सारे पदार्थ आए कि ये पहाड़ जैसे ही हो गए। गोवर्धन जी तो अपने आप में ही पहाड़ हैं, पर्वत हैं, लेकिन गोवर्धन जी के ऊपर और कई पर्वत बने, लेकिन ये पर्वत मिट्टी के नहीं थे, ये पर्वत चावल के थे, चपातियों के थे, सब्जी के थे, ऐसे कई पर्वत बने। और केवल चावल बनाने के लिए 10 ब्राह्मण थे, केवल अलग अलग प्रकार के सब्जियां बनाने के लिए, कोई सूखे सब्जियां कोई गीले सब्जियां बनाने के लिए 5 ब्राह्मण थे, केवल चपाती बनाने के लिए 5-7 ब्राह्मण अलग थे। और फिर शहर के गांव के सारे लोग आते जा रहे थे, और भी पदार्थ आ रहे थे, इतने प्रकार की वो मिठाइयां थी कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती, दूध के दही के अलग अलग पदार्थ, और ये सारे पदार्थ शुद्ध घी में बनाए हुए। ये असली आनंद है घी के, गाय के शुद्ध घी के बनाए हुए पदार्थ खाना, नहीं कि डालडा और पोस्टमैन ये सारे चीजें, इनसे स्वाद नहीं आता है और न ही इससे पौष्टिकता बढ़ती है। लेकिन देशी गाय के जो घी से जो पौष्टिकता और स्वाद मिलती है वो और किसी पदार्थ से नहीं मिल सकती है। तो इस सारे चपातियों में भी पूरा घी से भरा हुआ, चावल में सब्जियों में हर पदार्थ में अच्छा सा घी पड़ा हुआ था। ये है सच्चा ऐश्वर्य। सच्चा ऐश्वर्य सोने चांदी का नहीं है, बैंक बैलेंस का नहीं होता, सच्चा ऐश्वर्य धन ये धान्य और दूध का होता है, गायों का। तो इस प्रकार से ये सारे पदार्थ भगवान के सामने रखे गए और बहुत ही शानदार ढंग से भोग चढ़ाया गया, पहाड़ों के पहाड़ पहाड़ों के पहाड़। और श्री गोपाल जी ने इन सब को स्वीकार किया। अभी जब भगवान के सामने हम भोग रखते हैं तो भगवान केवल अपने आंखों से उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान के अंगों में कोई अंतर नहीं होता। उनके आंखें जो हैं वो कान के कार्य कर सकते हैं, कान आंखों के कार्य कर सकते हैं इत्यादि, तो अपने जिह्वा का काम वो अपने आंखों से भी कर सकते हैं। इसलिए गोपाल जी ने केवल दर्शन करके ही सारे पदार्थों को ग्रहण किया और इतना ही नहीं, ग्रहण करके फिर से वहीं के वहीं सारे पदार्थों को रख दिया प्रसाद के रूप में। ये एक अचिंत्य बात है, हमारी कल्पना के बाहर है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को खाकर फिर भी वहीं के वहीं उस पदार्थ को रखे। हम जब किसी चीज को खाते हैं तो प्लेट खाली हो जाता है, लेकिन भगवान जब खाते हैं तो खाते भी हैं और प्लेट को भी भरा हुआ रख जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? भगवान की दिव्य अचिंत्य शक्ति है ये। तो सभी लोग जो अन्य लोग थे उन्होंने देखा कि भोग चढ़ा हुआ है भगवान को, लेकिन किस तरह से भगवान गोपाल जी उसको स्वीकार कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, इस बात को वो नहीं देख पाए। लेकिन माधवेंद्रपुरी सब देख रहे थे, उनको वो चीज दिखाई पड़ रही थी जो कि अन्यों को नहीं दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि माधवेंद्रपुरी भगवान श्री कृष्ण के इतने शुद्ध भक्त थे। तो किस प्रकार से गोपाल जी उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं और साथ साथ में प्लेट भरा हुआ रख रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, माधवेंद्र पुरी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। और जब अच्छी तरह से भगवान संतुष्ट हुए, लेकिन काफी समय लगा संतुष्ट होने के लिए, क्योंकि इतने समय से वो भूखे प्यासे थे कि सारे पहाड़ों के पहाड़ वो खाने लगे। और सारे गांव के निवासी ने सोचा कि माधवेंद्र पुरी की कृपा से आज ठीक वही अन्नकूट का महोत्सव हुआ जो कि पूर्व काल में 4,500 साल पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर गोवर्धन लीला के समय प्रदर्शित कराया था। इसलिए इसको अन्नकूट महोत्सव कहते हैं, अन्न या चावल का पहाड़। इस प्रकार से गोपाल जी बड़े संतुष्ट हुए। और उसके बाद में माधवेंद्र पुरी ने बताया कि अभी सारे गांव के लोगों को बुलाओ और उनको पेट भर के खिलाना चाहिए। पहले ब्राह्मणों को, माताओं को बुलाया, बच्चों को खिलाया गया और फिर सारे जो गांव के निवासी थे उन्होंने पेट भगवान के प्रसाद का सेवन किया। सभी लोग बड़े संतुष्ट हुए। जब माधवेंद्र पुरी ने देखा कि सभी लोग खा चुके हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं, तब थोड़ा सा उन्होंने दूध का पान किया और विश्राम किया। इस प्रकार से गोपाल जी बड़े अच्छे ढंग से उधर विराजे और लोग उनकी सेवा करने के लिए आए। धीरे 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 से बात फैलने लगी सारे ब्रज भूमि में कि गोवर्धन गांव में गोपाल जी पधारे हुए हैं और गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनकी स्थापना की गई है और धूमधाम से एक विशाल अन्नकूट का महोत्सव मनाया गया है। जब ये सुना लोगों ने तो अलग अलग गांवों के लोग माधवेंद्र पुरी के पास में आने लगे और निवेदन करने लगे कि जिस तरह से गोवर्धन गांव ने ये अन्नकूट महोत्सव मनाया है, हम चाहते हैं कि हमारे गांव से की ओर से भी एक ऐसे अन्नकूट मनाया जाना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा ठीक है। तो उस गांव के लोग आते, गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में भर भर के वो पदार्थ लेकर आते, चावल, गेहूं और फल फूल, सब्जियां, दूध, दही, घी इत्यादि। और फिर उसी तरह से जैसे कि पहले दिन बनाया गया था और विशाल अन्नकूट का महोत्सव मनाया गया। फिर सारे लोगों ने प्रसाद लिया। उसके बाद में अंत में थोड़ा सा दूध का पान किया माधवेंद्र पुरी में। दिन भर उपवास रखते थे और जब सारे लोग खा लेते थे थोड़ा सा दूध का पान लेते करते थे बस, और फिर सो जाते थे। इस प्रकार से एक दिन के बाद दूसरे दिन अलग अलग गांव आने लगे गांव वाले और कहने लगे हमारे गांव के लिए भी अन्नकूट करना चाहिए। ऐसे हर रोज अलग अलग गांवों की ओर से एक एक अन्नकूट का महोत्सव चलता रहा। कई दिनों तक केवल अन्नकूट ही चलता रहा। गोपाल जी की सेवा तो ऐसे हुई, बस गोपाल जी बिल्कुल संतुष्ट। हर रोज उनको चावल के, सब्जियों के, रोटियों के, मिठाइयों के, दूध के, पहाड़ों के पहाड़ मिल रहे थे। तो गोपाल जी तो बड़े खुश थे। और हर दिन अभिषेक ठंडे शीतल जल से, तो गोपाल जी बड़े प्रसन्न हुए। और फिर माधवेंद्र पुरी ने वहां के ब्राह्मणों को वैष्णव दीक्षा प्रदान की। और इस प्रकार से पूरे 2 साल सेवा चलती रही। उधर बंगाल से 2 वैष्णव ब्राह्मण आए तो माधवेंद्र पुरी उनके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए, उनको दीक्षा दी और उनको गोपाल जी की सेवा में स्थित कराया। और एक दिन जब 2 साल बीत गए थे, जब माधवेंद्र पुरी विश्राम कर रहे थे, तो अचानक दूसरी बार गोपाल जी उनके सपने में आए और गोपाल जी कहने लगे, अरे माधवेंद्र पुरी, तो तुमने बहुत अच्छी तरह से मेरी सेवा की है, मेरे लिए इतना अच्छा मंदिर बनाया है और क्या नहीं किया है, लेकिन फिर भी अभी तक मेरे शरीर में जो गर्मी है, इतने साल वो झाड़ियों में रहने की वजह से वो गर्मी गई नहीं अभी तक, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए मलय चंदन जगन्नाथपुरी से लेकर आओ। विश्वास करो मेरे शब्दों में, जल्दी से लेकर आओ। और मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न होऊंगा। माधवेंद्रपुरी तुरंत जाग गए। उन्होंने सोचा, अरे गोपाल जी का आदेश कि मुझे तुरंत चंदन ले आना चाहिए उनके लिए, लेप लगाने के लिए। तो तुरंत उन्होंने योजना की वहां जाने के लिए। जो भी वहां ब्राह्मण थे, सारे सेवाओं का विभाजन किया, आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे। सब लोग अपने अपने सेवा में लग गए। ऐसा नहीं कि माधवेंद्रपुरी को 10 बार उनको याद दिलाना पड़ा। ऐसा नहीं कि कई ब्राह्मण आज आए तो कल नहीं आए। सभी लोग अपने भगवान की सेवा में व्यवस्थित ढंग से आते थे। उसी प्रकार से हम भी जब यहां भगवान की सेवा के लिए आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम एक दिन आए, दूसरे दिन नहीं आए, 2 हफ्ते भूल गए या कहीं और गए। तो भगवान की सेवा के लिए जब कोई योजना बनाई जाती है, तो अच्छे ढंग से उसको निभाना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी ने एक बार कह दिया कि ठीक है, आपको ये सेवा करना है, आपको ये सेवा करना है। सभी वैष्णव भक्त जो है ब्रजवासी अपने अपने सेवा में लग गए। और वैसे वृंदावन के ही नहीं, लेकिन सारे ब्रजभूमि के इधर उधर के गांवों के लोगों ने गोपाल जी के लिए तो बहुत सेवा की थी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि हर एक घर से हर एक को थोड़ा थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, कुछ न कुछ भेंट अवश्य आया था। और इतना ही नहीं, कई लोगों ने अपने घर की थोड़ी भूमि गोपाल जी के लिए दे दी। इस प्रकार से गोपाल जी के नाम की भूमि काफी बढ़ गई। वैसे कहावत है कि सारी भूमि गोपाल की, वो तो केवल कहने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में वृंदावन के लोग अपनी भूमि दे दी गोपाल जी के लिए। अपने घर में सोना था, उसका हिस्सा दे दिया। इस प्रकार से गोपाल जी की पूंजी है बढ़ने लगी। बड़े अमीर हो गए गोपाल जी। वैसे गोपाल जी तो है ही अमीर, लेकिन फिर भी जब गोवर्धन में विराजे थे तो उस रूप में भी बड़े अमीर हो गए। उनके पास अच्छे अच्छे अलंकार, आभूषण, कपड़े इत्यादि आए। शानदार ढंग से उनको रोज भोग चढ़ाया जाता था। और इतना ही नहीं, सारे ब्रज भूमि में जितने भी परिवार थे, उन्होंने सबने एक एक गाय का दान किया गोपाल जी के लिए। तो कितने कुटुंब हुए होंगे, परिवार हुए होंगे ब्रजभूमि में, लाखों। तो लाखों गाय गोपाल जी की गौशाला में आ गई। तो होंगे तो गाय होने चाहिए ना। तो गाय के बिना गोपाल जी कैसे हो सकते हैं, वो कैसे खुश रह सकते हैं। तो इस प्रकार से लाखों गाय भी आ गई और गोपाल जी की पूंजी बढ़ती गई। इसका मतलब है कि ये एक पद्धति है। पुराने काल में भी राजा जो हुआ करते थे, वो जब मंदिर बनाया करते थे, तो फिर पुजारियों के लिए थोड़ी जमीन रख देते थे और फिर भगवान की सेवा के लिए बहुत बड़ी जमीन रखते थे। और उस जमीन से जो भी अनाज इत्यादि उत्पन्न होता था, वो सारे भगवान के मंदिर के लिए, उसके रहन सहन के लिए, उसके चलाने के लिए काम में आता था। और गांव के लोग भी आकर अपने अपने घर से जो भी धन गाय है वो मंदिर को देते थे। इस प्रकार से मंदिर बहुत शक्तिशाली हो जाता था। फिर मंदिर को कभी आर्थिक दृष्टि से चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि कल कैसे भगवान की सेवा चलेगी, क्योंकि सारे गांव के लोग आकर इतनी अच्छी तरह से दान कर लेते थे कि सब कुछ चल जाता था। क्योंकि हर एक व्यक्ति उस जमाने में जानता था कि मेरा धन मेरा नहीं है, ये तो भगवान का है। इसलिए कुछ न कुछ अपना अंश भगवान को देकर, मंदिर को देकर अपना जीवन वो ऐसे बिताया करते थे। और मंदिर ही उनके जीवन का केंद्र हुआ करता था। तो उसी प्रकार से हमारे लिए भी राधा गोकुलानंद जी मंदिर जीवन के केंद्र होने चाहिए। हमें हर रोज, या हर रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में कितना हो सके, जितना हो सके उतना आना चाहिए। प्रवचन, सत्संग, कीर्तन इत्यादि में शामिल होना चाहिए। राधा गोकुलानंद जी को अपना प्राण धन बना लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कभी आके माला बनाना, कभी आके मंदिर का मार्जन करना, कभी आके यहाँ पर अध्ययन करना, प्रवचन में शामिल होना, भक्तों से चर्चा करना, अलग अलग तरह की सेवाएं उपलब्ध है यहाँ पर। तो भक्तों को चाहिए कि वो आए यहाँ पर और मंदिर की शोभा बढ़ाएं अपनी भक्ति भावना से, ताकि भगवान श्री राधा गोकुलानंद प्रसन्न हो जाए। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी ने जब देखा कि गोपाल जी की सेवा इतनी अच्छी तरह से चल रही है और अभी गोपाल जी की इच्छा है कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, तो मुझे तुरंत ही निकल पड़ना चाहिए, तो व्यवस्था करके फिर वो निकल पड़े। आप जानते हैं कि उस जमाने में न तो रेलगाड़ी थी, न हवाई जहाज, न कुछ, इसलिए माधवेंद्रपुरी पैदल चलते गए। चलते 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 कई दिनों बाद जगन्नाथपुरी की ओर आते समय वो रेमुना गांव में आए और वहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर उन्होंने देखा और वहां पर अंदर गए और मंदिर को देखकर ही, मंदिर में जो सेवा चल रही थी उसको देखकर तुरंत समझ पाए कि यहां की सेवा तो बड़ी उत्कृष्ट श्रेणी की है, उत्तम श्रेणी की है। और उन्होंने मन ही मन में सोचा कि मुझे यहां के पुजारियों से बात करना चाहिए और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि किस तरह से यहां गोपीनाथ जी की सेवा वो करते हैं, क्योंकि यहां इतने अच्छे ढंग से सेवा कर रहे हैं, तो अगर मैं ये भी सीख जाऊं तो मैं वापस लौटकर ब्रज में गोवर्धन में मेरे गोपाल जी की सेवा भी इतने ही अच्छे ढंग से कर पाऊंगा। तो इस हेतु उन्होंने पुजारी से बात की, तो पुजारी ने बड़े विस्तार से उनको समझाया कि गोपीनाथ जी की सेवा वहां किस तरह से चल रही थी और बातों बातों में पुजारी ने बताया कि यहां गोपीनाथ जी की विशेष जो बात यह है कि जो उनको खीर चढ़ाई जाती है यह तो जग भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये इसका स्वाद अमृत से भी अधिक है, इसको अमृत केली कहा जाता है। इतना स्वादिष्ट और अमृतमय खीर सारे जगत में कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए इसको गोपीनाथ खीर कहते हैं और यहां की यह विशेषता है। और ठीक उसी समय गोपीनाथ जी के सामने खीर के कटोरियां रखी गई और उस खीर को देखकर माधवेंद्र पुरी के मन में एक विचार आया कि अरे काश मुझे बिना पूछे किसी ने अगर थोड़ा सा भी ये खीर हाथ में दिया तो मैं इसका सेवन करके मैं जान पाऊंगा कि इसको कैसे बनाना है, ताकि गोपाल जी की के लिए मैं ऐसा ही अमृत के समान खीर मैं बना पाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये विचार उनके मन में आया उनको बहुत बुरा लगा, बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वास्तव में भगवान को भोग चढ़ाने के पहले नहीं हमें किसी वस्तु उस किसी पदार्थ को खाना चाहिए, बल्कि हमें खाने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए पुजारियों को खास इस बारे में ख्याल रखना चाहिए। अगर बहुत ही भूखा भूखा पुजारी हो और सुंदर सुंदर व्यंजन खीर वगैरह पकौड़े पराठा चावल पुलाव सब लेकर जाए तो मन में बेचारे पुजारी तो सोचेंगे ही कि अरे रे इतना अच्छा है, स्वादिष्ट है, काश मैं इसका सेवन कर सकता। और खास करके जो दर्शन करने आते हैं उन्हें भी ऐसे देखना नहीं चाहिए। इसलिए जब कोई घर से भगवान के सामने उनके लिए भोग लाया जाता है तो उसके ऊपर कपड़ा रखा जाता है ताकि कोई और उसको देखे नहीं, क्योंकि अगर देखे तो तुरंत मन में विचार आ जाता है अरे वाह कितनी अच्छी चीज है, मुझे तो चखना चाहिए इसको, तो ये एक छोटा सा अपराध माना जाता है। तो माधवेंद्र पुरी इतने शुद्ध थे कि हालांकि ये भूल नहीं थी जो उन्होंने की थी, कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने अगर चखने की इच्छा रखी तो केवल इसलिए कि वो जान लें कि इसका स्वाद कैसा है, ताकि इसी तरह से वो गोपाल जी के लिए खीर बनाए। उन्होंने चखने की इच्छा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं की थी, लेकिन फिर भी क्योंकि एक नियम का उल्लंघन हुआ था इसलिए उनको बहुत अफसोस लगा और जैसे ही आरती समाप्त हो गई चुपचाप वहां से निकल पड़े और बाजार में चले गए। बाजार बंद हो चुका था, शाम हो गई थी और अकेले में सुनसान एक जगह में कहीं बैठकर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अपने माला पर करने लगे। उधर भगवान को विश्राम दे दिया पुजारी ने और ये प्रथा थी कि जो खीर के कटोरियां थी वो भगवान के वहीं पर रहते थे और रात को पुजारी उसको उठा लेते थे। रात को जब पुजारी नींद में थे तो उनके सपने में गोपीनाथ जी आए और कहने लगे, ए पुजारी उठो, जल्दी से उठो, मैंने मेरी माया शक्ति से एक खीर की कटोरी चोरी की है। तुमने जब सारे खीर की कटोरी निकाली तो मेरे माया की वजह से तुम इस एक कटोरी को देख नहीं पाए, जिसको कि मैंने छुपा लिया और मेरे चरणों के पीछे पर्दे के पीछे मैंने छुपा लिया। और खास मैंने ये छुपाया है माधवेंद्रपुरी नाम के मेरे एक भक्त के लिए। कटोरी लेकर ये सन्यासी माधवेंद्रपुरी को, जो कि बाजार में अकेले बैठे हुए हैं, उनको जाकर दे दो। पुजारी को नींद से जागरण हुआ, तुरंत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भगवान गोपीनाथ जी स्वयं मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे ये आदेश दिया। जल्दी से स्नान करके बड़ी उत्कंठा से अंदर गए देखने के लिए कि वास्तव में क्या खीर की कटोरी है कि नहीं। और जैसे गए अंदर, गोपीनाथ जी को प्रणाम किया और पर्दा थोड़ा सा उठाया और देखा कि अरे यहां तो खीर की कटोरी है, मैंने तो देखा ही नहीं, कभी ऐसे पहले नहीं हुआ, सारे कटोरियों में ले जाता हूं, ये एक कटोरी मेरे नजर से बच गया। तो खैर बड़ा आनंद हुआ उनको, वो कटोरी ले ली खीर की और तुरंत भागते हुए बाजार में गए। सभी लोग सो रहे थे, सब जगह शांति थी, तो जोर जोर से घोषणा करने लगे, पुजारी यहां कोई माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी कोई है? कहां है माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी? अरे जल्दी से बाहर आइए, क्योंकि स्वयं गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चोरी करके रखी है, ये खीर आपके लिए भेंट है, स्वयं गोपीनाथ जी का भेंट, आइए आइए। तो माधवेंद्रपुरी अकेले वहां चुपचाप जाप करते बैठे थे, अपना नाम का उच्चारण सुनकर तुरंत उठे, कौन बुला रहा है मुझे? और आए जब कथा सुनी, कहानी सुनी उस पुजारी से, तो बड़े विस्मित हो गए और कहने लगे, अपने मन ही मन में भाव विभोर हो गए कि गोपीनाथ जी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु होते हैं अपने भक्तों के ऊपर, वास्तव में ये भक्त वत्सल हैं। क्योंकि मैंने अपने मन में इच्छा रखी थी खीर को आस्वादन करने के लिए और मैं चले आया बिना आस्वादन किए हुए, इसलिए भगवान ने खास करके मेरे लिए ये चोरी कर ली। तो माधवेंद्र कर लिया, वास्तव में अमृत ही था ये, इतना स्वादिष्ट कि बस चखते ही रह गए माधवेंद्रपुरी। और क्योंकि ये साधारण खीर नहीं था, भगवान ने चखा हुआ खीर था और भी स्वयं उनके हुआ था, इसलिए और भी इसका स्वाद बढ़ गया। और इसका पान करके, सेवन करके, फिर ये जो कटोरी थी, कुल्लड़ था मिट्टी का, उसको उन्होंने चूर चूर कर दिए और अपने पास छोटे से कपड़े में बांध कर रख दिए। और इसके बाद में माधवेंद्रपुरी ये मिट्टी के टुकड़े छोटे छोटे से हर रोज थोड़ा थोड़ा पान करते, इसका सेवन करते थे, क्योंकि ये कटोरी को स्वयं भगवान ने स्पर्श किया था, तो ये साधारण मिट्टी नहीं है, ये दिव्य मिट्टी हो गई है। तो लेकिन इसके बाद में माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि अभी ये पुजारी हैं, इन्होंने सारे शहर को बता दिया है कि ये गोपीनाथ जी ने ये खीर माधवेंद्रपुरी के लिए चोरी कर दी है, इसलिए वहां गोपीनाथ जी का नया नाम हुआ खीर चोरा गोपीनाथ। और आज भी ये मंदिर रेमुना में है, बालेश्वर नाम के गांव के पास, खीर चोरा गोपीनाथ, बड़ा विख्यात प्रसिद्ध है ये मंदिर। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि गोपीनाथ जी तो प्रसिद्ध हैं, उनको होना ही चाहिए, आखिर वो तो स्वयं भगवान हैं। लेकिन ये घटना, इस घटना के बारे में सुनकर मेरी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, सभी लोग मेरा दर्शन करने आएंगे, मेरे साथ में बात या आशीर्वाद लेने आएंगे, मुझसे दंडवत प्रणाम करेंगे, लोग सोचेंगे कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं कि गोपीनाथ जी ने स्वयं मेरे लिए खीर चोरी की है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है मेरे लिए। तो देखिए माधवेंद्रपुरी जैसे महाभागवत के सोचने के ढंग में और हमारे सोचने के ढंग में कितना अंतर है। अगर हमारे सामने कोई हमारी प्रशंसा करे और हमारा गुणगान हो, हमारी प्रसिद्धि हो, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, अपने प्रसिद्धि कभी नहीं होता है, जहां उनकी प्रसिद्धि हो जाती है वहां से दूर भाग जाते हैं। ये है शुद्ध भक्तों के गुण। केवल भगवान के और दूसरों भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं, लेकिन खुद अपना गुणगान सुनते हैं तो कान बंद करते वहां से चले जाते हैं। ये है नम्रता। लेकिन जब हमारे अंदर नम्रता नहीं होती है तो हमारे लिए अपना ही गुणगान अमृत के बराबर, अमृत केले के समान लगता है। और हम लगता, हमें सोचने लगता है कि हाँ कितने सच्ची बात ये लोग बोल रहे हैं। और दूसरों का गुणगान जब होता है तो हमें अमृत केले के बराबर नहीं लगता है। जो भी गलतियां उस भक्त के अंदर हैं उनके बारे में हम सोचने लगते हैं कि अरे ये सारे इस भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो मालूम है ये भक्त ऐसे हैं वैसे हैं, उनके अंदर ये दोष है वो दोष है। लेकिन माधवेंद्र पुरी जैसे शुद्ध भक्तों के जीवनी से हम पता कर सकते हैं कि हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, किन गुणों का अनुशीलन करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो खैर रात रात में ही माधवेंद्र पुरी वहां से निकल पड़े, दूर गए वहां, ताकि रेमुना के निवासी उनके पास में नहीं आए और उनका गुणगान न करें। धीरे धीरे चलते चलते आखिर माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। दृढ़ निश्चय से अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। जितने दृढ़ता से उत्साह से भगवान के भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, उतने ही उत्साह से और दृढ़ता से भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का गुणगान हो। हालांकि भक्त नहीं चाहता है। माधवेंद्रपुरी दूर भाग के गए क्योंकि रेमुना में उनकी प्रसिद्धि बहुत होने वाली थी, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं माधवेंद्रपुरी को। जहां भी भगवान के शुद्ध भक्त जाते हैं प्रसिद्धि उनके पीछे पीछे जाती है। संसार के लोग प्रसिद्धि के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन प्रसिद्धि देवी जो है वो इतनी चंचल है कि उनके हाथ में आती नहीं है, पीछे भागते हैं। प्रसिद्धि देवी भी लक्ष्मी देवी की तरह है चंचल, और कोई जो संसार का आदमी प्रसिद्धि देवी को वश में कर भी लेता है लेकिन जल्दी से हाथ से निकलकर चली जाती है। और जितना ही संसार में आदमी को मान आता है उतने ही जल्दी से अचानक अकस्मात अपमान भी आ जाता है। आज कोई किसी व्यक्ति का गुणगान हो रहा है और वही व्यक्ति कल उसका अपमान करेंगे, उसकी निंदा करेंगे। ये तो संसार का नियम है, आप सबने देखा होगा और शायद अनुभव भी अपने जीवन में किया होगा कि जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं कल ही वो हमारी निंदा करते हैं। यह है संसार। इसलिए हमें संसार में अपमान से बचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और मान को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्य करते मान आए या भला अपमान आए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्याह ताम स्थिति क्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से गर्मी का मौसम आता है और जाता है, जिस प्रकार से ठंडी का मौसम आता है और जाता है, उसी प्रकार से संसार में सुख दुख मान अपमान प्रसिद्धि यश अपयश ये सब आता रहेगा जाता रहेगा। इसलिए इसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो भी परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में उनको सहन करना चाहिए। तो मान अपमान यश अपयश इत्यादि से प्रभावित न होकर हमें केवल भगवान की सेवा भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से संसार के लोग अपमान को अपमान से दूर रहने का और मान के करीब रहने का प्रयास करते हैं, प्रसिद्धि देवी के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन भक्त के पीछे पीछे प्रसिद्धि देवी भागती हैं। इसलिए जब माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी में आ पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहां के लोग पहले से ही जान चुके थे कि माधवेंद्र पुरी के साथ में और गोपीनाथ जी की क्या अद्भुत लीला हुई। तो जैसे ही जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया उन्होंने, तो सारे ढेर के ढेर लोग उनके पास में झुंड आए लोगों के। कोई उनको दंडवत कर रहा है, कोई उनको आशीर्वाद उनसे आशीर्वाद मांग रहा है, कोई उनका गुणगान कर रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई उनके दर्शन के लिए आया है। तो माधवेंद्र पुरी ने देखा तो सोचा अरे रे ये क्या हो गया, मैं एक जगह वहां से भाग गया और यहां आकर देखता हूं कि वही बात। तो वहीं से भी जाने की सोच रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने याद किया कि मैं तो यहां गोपाल जी के आदेश का पालन करने के लिए आया हूं, अगर मेरी इच्छा की वजह से मैं यहां पर भाग यहां से भाग तो फिर गोपाल जी की सेवा कैसे होगी। तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, जो भी हो मुझे यहां रहना होगा। तो वहां पर रहे और जगन्नाथ जी के पुजारियों के साथ में वो बैठे, चर्चा करने लगे और सारे गोपीनाथ जी की लीला, गोपाल जी की जो इच्छा है वो बताई, उनको सारी कथा बताई कि कैसे गोपाल जी उनके सपने में आए थे, कैसे गोपाल जी प्रकट हुए, किस तरह से उनकी धूमधाम से स्थापना हुई, कैसे गोपाल जी ने उनको जगन्नाथपुरी मलय चंदन लाने के लिए भेजा। ये सारी कथा माधवेंद्रपुरी ने वहां के पुजारियों को बताई। मलय चंदन ये बड़ा प्रसिद्ध, मलय पर्वत मतलब नीलगिरी, पश्चिम घाट में यहां से दक्षिण भाग में जो पर्वत है उसे मलय पर्वत माना जाता है। शास्त्रों में पुराणों में इसका उल्लेख कई बार आता है और वहां का चंदन बड़ा अच्छा होता है, इसलिए चंदन को कभी कभी मलय ज कहा जाता है। ज मतलब जन्म लेने वाला, जो मलय प्रांत में चंदन होता है उसको मलय ज कहते हैं। तो ये चंदन जगन्नाथपुरी में भी उपलब्ध था। तो जब पुजारियों ने सुना माधवेंद्रपुरी की इच्छा तो तुरंत बड़े उत्साह से उन्होंने माधवेंद्रपुरी की सहायता करने के लिए प्रयास किया। उस समय में भी जो चंदन का उत्पादन था वो सरकार के निर्देशन में चलता था, ऐसा नहीं है कि कोई भी चंदन का व्यापार कर सकता था। तो उन्होंने सरकारी अधिकारियों से उन्होंने अनुमति प्राप्त कर ली और बहुत सारा चंदन और कर्पूर माधवेंद्रपुरी के हवाले कर दिया। साथ साथ उनको एक सेवक और एक ब्राह्मण सहायक भी साथ में दिया। साथ साथ में उनको जाने के लिए थोड़े खर्च के लिए थोड़ा धन भी दिया और जो भी कागजात आवश्यक होते हैं, जो टोल के अधिकारी होते हैं उनके पार करने के लिए, वो कागजात भी उनको दिए। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ने ये सारे चीज लेकर, क्योंकि भारी भारी थी ये वस्तु, वो फिर से चल पड़े वृंदावन की ओर। कुल मिलाकर करीब करीब 40 किलो चंदन था और 20 तोले कर्पूर, काफी बड़ा वजन हो जाता है चंदन का, 40 किलो चंदन। इस प्रकार से ये सारे धीरे धीरे से उठा उठा कर फिर वो जा रहे थे और जगह जगह उनको सरकार के अधिकारी मिलते, लेकिन कागज देख दिखाकर किसी न किसी तरह से वो पार हो गए। जो आजकल की प्रथा है या जो चीजें आजकल प्रचलित हैं उस काल में भी थी, जहां भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं वहां थोड़ा कुछ उनको देना पड़ता है उनको खुश रखने के लिए, फिर अपना काम हो जाता है। तो उसी प्रकार से उन अधिकारियों के पार जाने के लिए भी साधारणतः लोगों को कुछ न कुछ उनको बख्शीश देनी पड़ती थी, लेकिन माधवेंद्रपुरी को कुछ नहीं देना पड़ा, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको पूर्ण विश्वास था भगवान श्री कृष्ण में, इसलिए किसी न किसी तरह से वो सरकारी अधिकारियों के पार चलते गए और आगे चल के फिर से रेमुना में आ पहुंचे। वहां जब आए फिर से खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में लौट कर आए और वहां पुजारियों ने उनको देखा, बड़े प्रसन्न हुए माधवेंद्रपुरी को फिर से देखकर। फिर वहां खीर का सेवन किया उन्होंने, बड़ा आनंद लिया वहां। और फिर जब रात को विश्राम कर रहे थे तो वही गोपाल जी वृंदावन के तीसरे बार उनके सपने में आए और बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे, मैंने तुम्हें तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम इतने दूर वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाओ और मेरे लिए इतना भारी चंदन का वजन लेकर आओ। तुमने मेरे आदेश का पालन किया, पैदल इतने दूर गए और चंदन हासिल भी कर लिया और इतना भारी वजन उठा उठा कर यहां रेमुना तक आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। वैसे गोपीनाथ गोपाल जी को पता था कि और भारी उठाकर लाना बड़ा कष्ट होगा माधवेंद्रपुरी को, हालांकि माधवेंद्रपुरी ने यह कष्ट के रूप में अनुभव नहीं किया। उन्होंने सोचा कि यह तो भगवान के लिए एक सेवा का मौका है, कितने बड़े आनंद की बात है। वास्तव में यह भक्त की भावना होती है कि भक्ति मार्ग में जो भी कठिनाई आती है, भक्त उसको कभी भी कठिनाई के रूप में देखता नहीं है, बल्कि आनंद के रूप में देखता है। भक्ति विनोद ठाकुर, जो हमारे संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने प्रार्थना की है कि हे गोविंद, आपकी सेवा में जो भी कष्ट मुझे अनुभव होता है, ये कष्ट नहीं, वास्तव में ये आनंद है मेरे लिए, दिव्य आनंद है। तो माधवेंद्र पुरी ने भी इतना सब करना भगवान के लिए कभी भी उसको कष्ट नहीं सोचा। ये है प्रेम। प्रेम में जो सेवा की जाती है, जितना भी कष्ट या कठिनाई आए उसके लिए शोक नहीं करता है भक्त। जिस प्रकार से मां को भी बच्चे की सेवा के लिए करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, दिन रात जागना पड़ता है, बच्चा कभी भी उठ के कुछ भी कर लेता है, लेकिन मां कभी ये नहीं सोचती कि बच्चा कितना बोझ बन गया है मेरे ऊपर, क्यों हो गया ये बच्चा, नहीं, मां में प्रेम होता है तो वो कष्ट को कष्ट नहीं मानती है, प्रेम मानती है। ठीक उसी प्रकार से क्योंकि भक्त भगवान से इतना प्रेम करते हैं, तो भक्ति के दौरान जो भी कठिनाइयां आती हैं उसको कभी भी बोझ नहीं समझते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम यहां राधा गोकुलानंद मंदिर में आकर भगवान की सेवा करते हैं, कई बार कठिनाइयां होती हैं, कई बार कुछ दिन उसे हमें तकलीफ नहीं समझना चाहिए, भगवान की कृपा समझना चाहिए। तो गोपाल जी जानते थे कि माधवेंद्र पुरी को कितना कष्ट हो रहा है, तो माधवेंद्र पुरी को अधिक कष्ट से बचाना चाहते थे। और इसके अलावा रेमुना से आगे वृंदावन को आने के लिए रास्ता बड़ा खतरनाक था, क्योंकि जगह जगह जंगल, वहां खतरनाक जानवर, और इसके अलावा मुसलमान राजाओं के सैनिक जो इधर उधर फैले हुए थे, सब जगह थे, और नाना प्रकार के डकैत जो कि चोरी कर सकते थे इतना मूल्यवान भंडार। तो उन्होंने सोचा कि अभी माधवेंद्र पुरी को वृंदावन ये सब ले आने की आवश्यकता नहीं है। तो माधवेंद्र पुरी को गोपाल जी ने सपने में आदेश दिया और कहा कि हे माधवेंद्र पुरी, अभी मैं बड़ा प्रसन्न हूं, अभी ये चंदन यहीं के यहीं इसको घिसाओ, कर्पूर में मिलाओ, कर्पूर से मिलाओ, और फिर यहीं पर गोपीनाथ जी के शरीर पर लेप लगाओ। गोपीनाथ जी में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, और जब तुम चंदन और कर्पूर का लेप गोपीनाथ जी के शरीर पर लगाओगे तो मेरे शरीर के ऊपर भी खुद ब खुद आ जाएगा, इसलिए मेरा शरीर भी यहां वृंदावन में ठंडा हो जाएगा। हालांकि रेमुना और वृंदावन के बीच में अंतर कई हजार किलोमीटर का है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण तो वही है, उनको किलोमीटर का क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान गोपाल जी ने कहा कि अगर गोपीनाथ जी को लेप लगाओगे चंदन का, तो ये लेप मेरे शरीर भी वृंदावन में आ जाएगा, गोवर्धन में, और मेरा शरीर ठंडा हो जाएगा, मैं पूरी तरह से संतुष्ट रहूंगा। तो बिना संशय किए हुए ये कार्य आरंभ करो। तो माधवेंद्र पुरी नींद से जागे, तीसरी बार गोपाल जी का सपना आया था, गोपाल जी ने स्वयं उनको आदेश दिया था, तो जल्दी से उठे, स्नान करके मंदिर में आए और फिर वहां के पुजारियों को आदेश दिया कि देखो ये सब चंदन और कर्पूर में लाया हूं, गोपीनाथ जी के, गोपाल जी ने आदेश दिया था इसलिए, लेकिन कल मुझे गोपाल जी का ही आदेश आया कि ये चंदन और कर्पूर गोपीनाथ जी के शरीर में लेप लगाकर लगाना चाहिए। तो वहां के पुजारी बड़े प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर कि गोपीनाथ जी की सेवा इतने अच्छे ढंग से होने वाली है। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा, ये मेरे साथ में दो सेवक हैं, और भी दो सेवक लीजिए, मैं इनका वेतन या इनकी तनख्वाह मैं दे दूंगा। और इस प्रकार से दिन भर ये चार सेवक चंदन को घिसने के काम में लगने लगे, और फिर चंदन का लेप अच्छी तरह से गोपीनाथ जी के दिव्य शरीर पर लगाया गया। मुना में गोपीनाथ जी ठंडे हुए, और उधर गोवर्धन वृंदावन में भी गोपाल जी बड़े ठंडे हुए, संतुष्ट हुए। और जितने दिन तक वो चंदन वहां रहा, चंदन और कर्पूर, उतने दिन गोपीनाथ जी की सेवा चलती रही। और जब चंदन और कर्पूर खत्म हो गया, फिर से माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी में लौटकर थोड़े दिन वहां रहे, और बाद में वृंदावन की ओर फिर से चल पड़े। तो ये चंदन यात्रा का उत्सव इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी के पद चिन्हों में चलकर हम यहां हमारे मंदिरों में भी मनाते हैं। तो जितने प्रेम से, जितने कष्ट से माधवेंद्र पुरी ने भगवान के शरीर की गर्मी को ठंडक पहुंचाने के लिए, कम करने के लिए ये उत्सव मनाया, उसी प्रकार से हमारे मंदिर में पूरे 21 दिन ये उत्सव को मनाते हैं। बड़ा सुंदर उत्सव है। अलग अलग मंदिरों में, वैष्णव मंदिरों में जैसे जगन्नाथपुरी में इत्यादि, रेमुना में भी विशेष विशेष सेवाएं की जाती हैं भगवान के लिए। इस समय विशेष पूजा अर्पण किए जाते हैं, विशेष भोग चढ़ाया जाता है भगवान को। और रेमुना में 3 कृष्ण के मूर्तियां हैं, एक तो खीरचोरा गोपीनाथ का है, दूसरा है गोविंद का और तीसरा है मदन मोहन का, और एक भी है राधा रास बिहारी जी। तो जो भी 3 प्रमुख कृष्ण के मूर्तियां हैं उनको ये आज भी चंदन का लेप होता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये सारी कथा अपने भक्तों को सुनाया और बड़े उत्साह से कीर्तन किया, और कीर्तन करके रात को वहीं पर रहे। अगले दिन वहां की मंगल आरती में शामिल होकर फिर वहां से आगे पुरी की ओर निकल पड़े। तो ये चंदन यात्रा का महोत्सव अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। जगन्नाथ पुरी में प्राचीन काल से चंदन यात्रा मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान जल क्रीड़ा करते हैं, क्योंकि भगवान भी खेल क्रीड़ा करना चाहते हैं, वो भी ऐसे रमण करना चाहते हैं। ये हमारे अंदर जो खेल कूद की क्रीड़ा की जो प्रवृत्ति है वो भी भगवान से ही आती है, लेकिन यहां पर इसका विकृत प्रतिबिंब है। हम देखते हैं यहां लोग अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं, या टीवी के सामने बैठकर या किसी स्टेडियम में जाके खेल देखते हैं। तो ये प्रवृत्ति भगवान में है खेल क्रीड़ा करने की। तो जब हम भगवान के खेल क्रीड़ा में रमण करते हैं तो खुद हमें खेल क्रीड़ा करने की इच्छा पूर्ण खत्म हो जाएगी, तो केवल भगवान की सेवा में हम लगेंगे। जगन्नाथपुरी में एक सरोवर है जिसका नाम है नरेंद्र सरोवर, और इस सरोवर के बीच में एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, बाजू में सब पानी ही पानी है, केवल बीच में एक मंदिर। जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया वहां पर हैं, और जगन्नाथ जी जो कि स्वयं कृष्ण हैं, उनके पीछे यशोदा मैया खड़ी है, और सामने वहां पर लक्ष्मी देवी भी विराजे हैं। और यहां पर प्रथा है कि इस चंदन यात्रा के महोत्सव में भगवान को नौके में बिठाया जाता है, क्योंकि जगन्नाथ जी बड़े भारी हैं, उनको बिठाया नहीं जा सकता, इसलिए जो उत्सव मूर्ति है जिनका नाम है गोविंद, गोविंद देव को नौके में बिठाया जाता है। हर एक मंदिर में बड़े विग्रह होते हैं और छोटे विग्रह होते हैं। बड़े विग्रह जो मूल विग्रह होते हैं, प्रमुख विग्रह होते हैं, लेकिन ऐसी प्रथा होती है कि शोभा यात्रा में, उत्सव में पालकी में बिठाकर, पालकी को सजाकर भगवान को सैर करने के लिए लिया जाता है। जिस प्रकार से लोग ऐसे ही सैर करने जाते हैं शाम के समय, सुबह के समय, तो भगवान को भी लिया जाता है। कितनी सुंदर संस्कृति है ये, इस सब कुछ हमारा सारा आनंद भगवान से, आनंद से मिलता जुलता है, मतलब संबंधित है। जिस चीज में भगवान आनंद लेते हैं भक्त भी उन चीजों में आनंद लेते हैं। भगवान सैर करने ले जा रहे हैं तो सभी भक्त उनके पीछे पीछे साथ साथ में कीर्तन करते हुए, और घर घर से लोग आते हैं भगवान को भोग लेकर आते हैं कि भगवान आए हैं अपने सैर में तो हम भी उनको कुछ दे दें, उनको खिलाएं, कुछ पिलाएं, कोई उनको फूल देते हैं। यहां मंदिर से भी बीच बीच में जब यहां के हम भक्त लोग जब पालकी उत्सव निकालते हैं, शहरों में सड़कों में जाते हैं, तो कई बार कितने श्रद्धालु लोग अपने अपने घरों से नैवेद्य लेकर आते हैं, कोई आरती उतारते हैं। आज भी बेलगाम जैसे तो छोटी मूर्तियां बाहर लिए जाते हैं, क्योंकि बड़ी मूर्तियों को तो नहीं ले जा सकते, खास करके प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी बड़े भारी हैं तो उनको नौका में नहीं रखा जा सकता, इसलिए गोविंद देव है उत्सव मूर्ति, उनको रखा जाता है नौके में, और फिर गोविंद देव बड़े आराम से नौके में बैठकर जल विहार करते हैं, और वहां पर सारे भक्त कीर्तन करते हैं, और इस प्रकार से गोविंद देव आनंद लेते हैं। जब महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए भक्त बंगाल से एक बार आए तो ठीक है चरित समय ही आए, और उनकी उनका एक कार्यक्रम था कि हर साल वो चार महीने चातुर्मास के समय जगन्नाथपुर में आया करते थे और चैतन्य महाप्रभु का संग लिया करते थे। और पहले जब जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते थे तो सीधे पहले नरेंद्र सरोवर में जाते थे और वहां पे स्नान करके फिर आगे चलते थे। तो एक बार एक साल जब वहां भक्त आए जगन्नाथपुरी तो ठीक इस चंदन यात्रा के समय आए और चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर गोविंद देव के जल विहार को देखने के लिए आए थे। तो सारे वैष्णव भक्त भी वहां पर आए और बड़ा धूम बड़े धुआंधार कीर्तन हुआ। भक्तों ने बहुत कीर्तन और नृत्य किया और गोविंद देव के जल क्रीड़ा में भाग लेकर बड़े दिव्य आनंद का स्वाद लिया। उधर रुमिना में भी ये चंदन यात्रा आज भी मनाया जाता है। वैसे माधवेंद्रपुरी के समय के बाद में भी वहां के एक राजा थे गजपति राजा नीलाचल के, उन्होंने मूर्ति की अच्छी स्थापना की थी, अच्छा मंदिर वगैरह बनाया था। लेकिन जब वहां भी मुसलमान कोई राजा नवाब अपने सैनिकों के साथ में उसने आक्रमण कर रहा था तो वहां के पुजारी ने गोपीनाथ जी को वहां से निकाल दिया, स्थानांतरित करके नजदीक के कुंड में छुपा दिया था। फिर एक शुद्ध भक्त थे बहुत, जिनका नाम था रसिकानंद प्रभु, उनके गुरु थे श्यामानंद प्रभु। और श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य, ये तीन भक्त थे वृंदावन में जिन्होंने पहली बार पुस्तक वितरण का कार्यक्रम आरंभ किया। जो भी वृंदावन के छह गोस्वामी जिनकी तस्वीर आप यहां पर बीच में देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे ये छह गोस्वामी। तो इन्होंने इनकी विरचित जो ग्रंथ थे उनका वितरण करने के प्रमुख थे। तो श्यामानंद प्रभु के प्रमुख शिष्य थे रसिकानंद प्रभु। तो रसिकानंद प्रभु ने पुनः गोपीनाथ जी को अपने मंदिर में स्थापित करके अच्छा सा मंदिर बनाया और आज खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में के पास में ही माधवेंद्रपुरी की समाधि है और रसिकानंद प्रभु की समाधि भी है और वहां भी आजकल चंदन यात्रा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उधर दक्षिण भारत में सिंहाचलम में, जहां पर नरसिंह क्षेत्र कहलाता है, ये सब नरसिंह देव की अलग अलग सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। तो सिंहाचलम में जियाड़ नरसिंह नाम के नरसिंह देव का एक विग्रह है, बड़े सुंदर है। और ये मूर्ति की विशेषता ये है कि साल भर उनको चंदन का लेप ही लगाया जाता है, सारे साल में 365 दिन, बल्कि 364 दिन कहना चाहिए, क्योंकि एक दिन ही ये चंदन निकाला जाता है और फिर उसके बाद में नया चंदन का लेप लगाया जाता है और ये एक तृतीया का दिन। तो इस प्रकार से चंदन की यात्रा जो है ये कई मंदिरों में अलग अलग तरह से मनाई जाती है। इसलिए यहां राधा गोकुलान मंदिर में भी श्रील प्रभुपाद ने सिखाए हुए पद्धति के अनुसार यहां अक्षय तृतीय से चंदन यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए हमें भी अब भगवान गोकुलानंद जी का दर्शन करके ये इसमें आनंद लेना चाहिए कि अभी भगवान बड़े आराम से चंदन का लेप लगाकर अभी ठंडक या शीतलता महसूस कर रहे हैं। भगवान के आराम में ही अपना आराम है, भगवान के संतुष्टि में हमारी संतुष्टि है, इससे अधिक हमें जीवन में क्या चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग है केवल आनंद कंद, इसमें आनंद ही आनंद है। भक्तों के संग में आओ, भगवान की सुंदर सुंदर रम्य कथाएं सुनो, भगवान का प्रसाद का सेवन करो, अच्छा कीर्तन करो, नृत्य करो, और क्या चाहिए जीवन में। अगर इतना सरल सा पथ हमने अपना लिया तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो पाएगा। इसलिए हमें ऐसे सब उत्सवों में आकर शामिल होने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा चाहते हैं, प्रवचन काफी लंबा चला गया, लेकिन आप इतने ध्यान से सुन रहे थे कि हमें लगा ही नहीं कि इतना समय बीत गया है। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
खीर तो भगवान को ही अर्पण किया गया था, जब उन्होंने उसे लिया ले लिया तो उसे चोर क्यों बोलने लगे उन्हें?
भगवान को अर्पण किया हुआ था पुजारी ने, लेकिन वैसे भगवान जब किसी भोग को स्वीकार करते हैं तो भोग के पात्र वहीं के वहीं रख देते हैं, प्रसाद बन जाता है। लेकिन अगर 10 कटोरियां या 10 पात्र आप अर्पण करते हो तो 10 के 10 वहीं पर रह जाते हैं, फिर पुजारी आके 10 के 10 ले जाता है, फिर भक्तों को बांट देता है और भक्त लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि भगवान ने एक कटोरी छुपा के अपने चरणों के पीछे रख दी और पुजारी बाकी सारे कटोरियां ले गया। पुजारी को समझ में नहीं आया कि एक कटोरी भगवान ने चुरा कर छुपा लिया है अपने भक्त के लिए। ऐसे कभी कभी भक्तों की आदत होती है कि एक बार अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन भोग में चढ़ाए जाते हैं, थोड़ा अलग से अपने लिए रख के भोग के बाद तक हम आबाद में खाए, नहीं होता है कभी कभी। दाल सब्जी चपाती रोटी सब भेजेंगे नीचे, लेकिन थोड़ा सा जो रस मलाई है थोड़ा सा अलग करके। तो इस प्रकार से भगवान ने चोरी करके अपने भक्त के लिए चोरी कर लिया, इसलिए उनको खीर चोरा गोपीनाथ कहते हैं। आज भी ये मंदिर इसी नाम से बड़ा विख्यात है सारे उड़ीसा में। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ पीछे मत पूछना।
ये आत्मान भगवान आत्माराम, आत्माराम का मतलब कुछ समझ?
आत्माराम मतलब अपने आप में ही अंदर जो संतुष्ट हैं, जिनको बाहर आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम भी सुख के लिए बाहर खोज रहे हैं, पैसे में, धन में, अच्छे भोजन में, गाड़ी में, बंगले में, लेकिन सच्चा सुख तो बाहर नहीं है, सच्चा सुख तो अपने अंदर है, अंतःकरण में। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। आनंद तो हमारे भीतर है, आत्मा का गुण ही, लक्षण ही है आनंद। तो जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, आत्म साक्षात्कार जिसको हो जाता है, वो समझ लेता है कि मैं ही सच्चिदानंद हूं, आनंद तो यही है, तो मुझे बाहर आनंद की खोज में क्यों जाना चाहिए, तो वो आत्माराम कहलाता है। उसी प्रकार से भगवान भी सच्चिदानंद है, अपने अंदर ही अंदर पूरी तरह से संतुष्ट है, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, जैसे कि हम हैं, इसलिए उनको आत्माराम कहा गया है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे